जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ यशोदनंदन व्रज जनरंजन जामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन जामुनतीरावनचारी जय राधा माधव
परिव्राजकचार्य स्तोत्रशत श्रीश्यमशील भैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की श्रीमद्भागवत महापुराणम की गौर प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Bande Gurun Isha Bhaktan Isham Ishavatarakan तत्प्रकाशं शतशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मदेक बंधु मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुतादायिन अतिनीचचतारक आनमुञ्चकदाचिन्मां प्रेम्णारित्कण्ठयस्पुर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के 15वां अध्याय श्लोक संख्या 62 पढ़ेंगे, है ना। काल तो 61 तक हो गया, आज 62 से करेंगे। संस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भागवत में ये। तात्पर्य बहुत छोटा है, लेकिन जो विषय वस्तु अभी चर्चा में है वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है। भावाद्वैतम् क्रियाद्वैतम् द्रव्याद्वैतम् तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् धुनुते मुनिः। भावाद्वैतम् क्रियाद्वैतम् द्रव्याद्वैतम् तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् धुनुते मुनिः। भावाद्वैतम् क्रियाद्वैतम् द्रव्याद्वैतम् तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रिन्स्वप्नान्धुनुते मुनिः। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की भावाद्वैतम देहात्म बुद्धि के एकत्व, क्रिया अद्वैतम कर्म में एकत्व, द्रव्य अद्वैतम विभिन्न सामग्री में एकत्व, तथा और आत्मनः आत्मा का वर्तयन विचार करते हुए, स्व अपना अनुभूत्या अनुभूति के अनुसार, यह इस भौतिक जगत में तीन स्वप्नान जीवन की दशाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, धुनुते त्याग देता है, मुनिः दार्शनिक या चिंतक। अनुवाद, भाव क्रिया तथा द्रव्य की अद्वैतता मतलब एकत्व पर विचार करने के पश्चात तथा आत्मा को समस्त कार्य कारणों से पृथक समझते हुए मुनि अपनी ही अनुभूति के अनुसार जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग देता है। तात्पर्य, अगले श्लोकों में भावाद्वैत क्रियाद्वैत तथा द्रव्यद्वैत इन तीन शब्दों की व्याख्या दी गई है, किंतु मनुष्य को भौतिक जगत में दार्शनिक जीवन की समस्त अद्वैतताएं छोड़नी पड़ती हैं और सिद्धि प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक जगत के वास्तविक जीवन को प्राप्त करना होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अभी चर्चा में है, संस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, मतलब जो जीवन मुक्त दशा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए ये उपदेश है। और ये जो उपदेश अभी दिया जा रहा है ये तात्विक उपदेश है, तत्व वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना बहुत जरूरी है भक्तों के लिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलौस, यहाँ हैते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। कभी कभी भक्तों की समाज में ये तत्व सिद्धांत को समझने के लिए इतना उत्साह नहीं रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जहाँ तक चैतन्य चरितामृत के वाक्य है, जहाँ हैते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस, जब तक व्यक्ति, जब तक भक्तों का तत्व विचार में यथार्थ बुद्धि ना हो तब तक कृष्ण को नहीं समझ सकता। कृष्ण को नहीं समझने का कारण क्या, मतलब क्या है? कृष्ण को हम खुद को हम जो समर्पित करेंगे भगवान कृष्ण के चरण में, वो भी सही रूप से नहीं हो पाएगा, तब तो भगवत प्राप्ति की संभावना तो कहाँ रह जाएगा। तो इसीलिए इस प्रसंग में यहाँ तात्विक उपदेश के द्वारा तीन स्वप्नान धुनुते मुनि मननशीला, मतलब जो शास्त्र के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझे हैं उनको यहाँ मुनि शब्द के द्वारा निर्देश किया गया है। और तीन स्वप्न यहाँ क्या है? भावद्वैतम, क्रियाद्वैतम और द्रव्यद्वैतम, या जो इस जगत के साथ परमेश्वर का जो अभिन्नत्व संबंध है या भिन्नत्व संबंध है, इसके द्वारा जो त्रिस्वप्न होता है, इस तीन स्वप्न को जो अच्छी तरह से समझ लेता है, कैसे? वर्तयन स्वानुभूतिः, वर्तयन विचारशील होकर के, विवेचना करते हुए। क्या विवेचना करना है? जैसे इस संसार में कुछ नास्तिक लोग हैं और कुछ तार्किक मीमांसक लोग हैं जो इस जगत को, दृश्यमान जगत को ही भगवान बोलते हैं, भगवान से अभिन्न मानते हैं, इसी को ही भगवान कहते हैं। तो एक तरह से ठीक है, भगवान जगत हैं, लेकिन भगवान भी जगत से भिन्न है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया हमको, क्या? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही समय में एक भी है और अलग भी है। कुछ नास्तिक लोग उसी को एकत्व लेकर के जगत को ही भगवान कह देते हैं, यही ब्रह्म है। किस माने में ये ब्रह्म है, भगवान के साथ इसका समान संबंध है, समानता की गई है, विचार किया गया है शास्त्र में, और किस माने में ये भगवान से भिन्न है, ये तत्व को भक्तों को सही रूप से विचार के माध्यम से समझना जरूरी है, तब भगवान में मन लग सकता है।
तो जैसे यहाँ कर कह रहे हैं कि त्रीन स्वप्नान, त्रीन स्वप्नान मतलब तीन जो स्वप्न है, एक जो स्वप्न है कहते हैं वस्तु भेद। आपने मोबाइल को थोड़ा साइलेंट मोड में रखिए, ज़्यादा समय नहीं, 45 मिनट क्लास होता है। तो ये जगत भगवान से भिन्न कैसे है या अभिन्न कैसे है, ये समझना है। इसका मतलब यह है एक स्वप्न जो है, और जो भेद समझ जाता है व्यक्ति, भेद मतलब यहाँ क्या है, देखिए जैसे जगत ईश्वर से भिन्न है, लेकिन अगर कहेंगे जगत ईश्वर से अलग है, लेकिन जगत की वस्तुओं का जो सत्ता है उसकी सत्यता भगवान भगवान के ऊपर आधारित है। और एक बार बोल रहा हूँ, जगत भगवान के साथ संबंध रखता है, एक तरह से जगत ही भगवान है, लेकिन अगर भगवान जगत नहीं होते, जगत की वस्तुओं का सत्यता नहीं संभव हो सकता। जगत की वस्तुओं की सत्यता की आधार कौन है, भगवान है। भगवान है, भगवान सत्य वस्तु है, उन्हीं का ये संसार है। कैसे समझेंगे, जैसे उदाहरण देते, भागवत की प्रथम श्लोक में इसका व्याख्या आता है, जन्माद्यस्य जतन्मय अदितरतस् चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गम मृषा। ये तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो, तेज वारी और मिट्टी, इन तीनों का विनिमय से क्या होता है, यत्र त्रिसर्ग ये सृष्टि अमृषा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझना चाहिए। जैसे देखिए, आप एक दर्पण में जैसे सूर्य का प्रतिफलन हो रहा है, तो दर्पण में जो सूर्य देख रहे हैं वो सत्य सूर्य है या मिथ्या सूर्य है, मिथ्या है। लेकिन इस सत्य इस जो सूर्य जो दर्पण के जो शीशा में जो सूर्य का प्रतिफलन हो रहा है, इससे क्या सिद्धांत हमको प्राप्त हो रहा है, असली सूर्य है इसीलिए ये सत्य जैसा देख रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे तो आप तो देख रहे हैं सूर्य है, उसको मिथ्या आप कैसे बोल रहे हैं, भाई सत्य तो देख रहा है सूर्य है ना, लेकिन मिथ्या क्यों आप बोले, प्रतिफलन है, इसका मतलब क्या है, इसको मिथ्या क्यों कहेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे भागवत गीता की 15वां अध्याय में इस जगत को चिन्मय जगत का प्रतिफलन क्या के रूप में कहा गया है ना, अश्वत्थमेनम, अश्वत्थ वृक्ष का जो एनालॉजी है उसके माध्यम से इसका मिथ्यात्व का समझाया गया है। इसका अर्थ ऐसे इस उदाहरण से समझिए, जैसे मैं कहा कि दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब है, आप देख रहे हैं, ये मिथ्या सूर्य, ये सत्य सूर्य नहीं है, सत्य सूर्य आकाश में है उनका प्रतिफलन, ये मिथ्या क्यों हमने कहा, यद्यपि हम देख रहे हैं, इसीलिए मिथ्या कहा गया। उसकी जब जो सूर्य का जो प्रतिफलन हम दर्पण में शीशा में देख रहे हैं, उसकी स्वरूप को हम विचार करें, उसमें तेज नहीं है, क्या जिसको कहते हैं गर्मी नहीं है, लेकिन उसकी असली सूर्य की स्वरूप में गर्मी है, इसलिए ये मिथ्या है। यद्यपि देख रहा है वो सत्य भक्त, क्या समझ में आया बस। तो उसी हिसाब से ये जो जगत हम देख रहे हैं संसार, ये भी जगत में जितनी सारी बनावटी चीज हैं ये सब चिन्मय जगत का प्रतिफलन है, ये भी अनित्य है, ये भी मिथ्या जैसा है। क्यों मिथ्या है? कि ये भगवान की स्वरूपभूत प्रकृति नहीं है। भगवान की जो स्वरूप है वो अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति से बना है चिन्मय जगत, और ये है भगवान की बहिरंग प्रकृति है। क्या समझ रहे हैं? ये भौतिक चीज जो जगत की जो बाहरी जगत है ये भगवान की स्वरूप में नहीं है, भगवान की बहिरंग प्रकृति है। तो ये बहिरंग प्रकृति के कारण यहां जो सब हम अनुभूति कर रहे हैं इसका सत्यता भगवान के ऊपर आधारित है। क्या समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद जी वो जो आप पढ़ेंगे पहला श्लोक की तात्पर्य जो जन्माद्यश्यजतः कहते हैं, ये यहाँ की जो सत्यता है इसका सत्यता एब्सोल्यूट सत्यता के ऊपर आधारित है। यहाँ जो हम सत्य रूप में देख रहे हैं, उदाहरण देते हैं क्या कि मृग मरीचिका, जैसे हम जाते हैं मरुभूमि में पानी दर्शन होता है, मतलब पानी कहीं है। इसी हिसाब से इस जगत की जो सुख है ये यथार्थ सुख नहीं है, ये मिथ्या सुख है। लेकिन असली सुख भगवत धाम है, भगवान की स्वरूप में है। अगर व्यक्ति इस अध्ययन के माध्यम से इस जगत की अनित्यता के बारे में या जगत की सत्यता भगवत की भगवान की सत्यता के ऊपर आधारित है ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो इस जगत के प्रति उसकी मोह निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मोह नष्ट। क्योंकि अरे असत्यता के वस्तु के पीछे क्यों भागे? अगर देखिए कई कहेगा कि देखो अगर दर्पण के ऊपर भी तो सूर्य है ही, ठंड लग रहा है जाओ उसके पास बैठो, ठंड निकल जाएगा, निकल सकता है। ठंड निवारण के लिए आपको जा करके डायरेक्टली सूर्य की किरणों में बैठना पड़ेगा तब आपकी ठंडाई दूर हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आप इस जगत की जितनी सारी वस्तुओं के संस्पर्श में आते हैं, भोगते हैं, खाते हैं, देखते हैं, उसमें जो आनंद हो रहा है ये असली आनंद नहीं है भाई। इसमें ठंडाई नहीं जाएगा, गर्मी नहीं प्राप्त हो सकता है, इसमें यथार्थ भोग नहीं हो सकता है, आपको यथार्थ आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है इस जगत में। ये है सिद्धांत भावाद्वैतम। तो ये जो चीज, जैसे कई जो नास्तिक लोग हैं, मीमांसक लोग हैं, जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये लोग कह देते हैं भागवत, ये भागवत में ये आया है, जैसे काल के श्लोक में ये समझाया जाएगा कि भावाद्वैतम क्या है। ये कहते हैं कि जैसे सूत से कपड़ा बनता है, कितना कितना ट्रिकी सिद्धांत देखिए, ये नास्तिक लोग मीमांसक लोग ऐसे इसको प्रचार करते, सूत से ही कपड़ा बना है, मतलब कपड़ा में सूत में कोई अंतर है? नहीं है, जगत ही भगवान है, भगवान ही जगत के रूप में प्रकाशित है, कोई भेद नहीं है, ऐसे हो गया। लेकिन ठीक है, इसके द्वारा क्या समझाया जाता है? हमारे आचार्यों की जो समझाया गया सिद्धांत वो समझना चाहिए कि ये जो जगत है ये चिद अचिद ईश्वरात्मक, इसका अर्थ यह है चिद अचिद ईश्वरात्मक जगत है। तो भगवान है जगत में या भगवान स्वयं रूप में जगत में कैसे नहीं है? जैसे भगवान ने गीता में कहा कि भूमि रापो नलो वायु खंग मना बुद्धिरेव च अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति, भगवान की बहिरंग प्रकृति है, समझे? तो ये बहिरंग प्रकृति जगत है लेकिन भगवान की जो अंतरंग प्रकृति जो स्वरूप शक्तिभूत जो जगत चिन्मय जगत ये इससे भिन्न है, अलग है। ये जो सिद्धांत है इसको समझने का मतलब, जैसे हम लोग समझते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर से भिन्न है, इस भाव अद्वैत के अंदर आता है सिद्धांत में। क्रियाद्वैतम द्रव्यद्वैतम तथात्मना, तो जैसे क्रियाद्वैत ये भावाद्वैत के बारे में और थोड़ा बोल देते हैं। जैसे देखिए, जब व्यक्ति वस्तुनि ब्रह्मणि भेद बुद्धि, जो भेद बुद्धि करता है, मतलब वो नहीं समझता है जगत के साथ भगवान की क्या संबंध है, मतलब भगवान सबको सबका मूल कारण है, भगवान सबका उत्स है, ये समझना चाहिए। इस जगत की कुछ भी वस्तु हम लोग स्वीकार करते हैं अपने भोग के लिए, हमको समझना चाहिए ये भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्या समझ रहे हैं? जिस समय व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है, तब उसमें क्या दूसरा स्वप्न आता है कि व्यक्ति सोच लेता है ये हमारे लिए है, और दूसरा वो भोगने के लिए कोशिश कर कुछ कार्य करता है, ये दूसरा स्वप्न है। और तीसरा स्वप्न क्या होता है? कार्य करने के बाद जो फल होता है उसको भोक्ता खुद को मानने लग जाता है, वो तीसरा स्वप्न है। समझ रहे हैं ना? भगवान के साथ इस जगत का क्या संबंध है, भगवान किस रूप में जगत में है, ये नहीं समझ पाना ये पहला स्वप्न है। और उसके बाद जगत को जगत की क्रियाओं में लग जाना वो दूसरा स्वप्न है। वो क्रियाओं के माध्यम से जो फल प्राप्त होता है वो फल को खुद को भुक्ता के रूप में मानना ये तीसरा स्वप्न है। क्या समझ में आया? तो ये तीन स्वप्नान धुनुते मुनि, जो मुनि मननशील व्यक्ति है, शास्त्र को सही रूप से समझे हैं, ये तीन स्वप्न से ऊपर हो जाते, धुनुते मतलब त्याग देते हैं उसको, उसे मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए ये अंतर्जाति कृष्ण भावनामृत संस्था प्रभुपाद जी ने बनाया, ये तीन स्वप्न से मुक्त करने के लिए सबको। क्या प्रभुपाद जी ने कहा? कहा देखो कोई बात नहीं, जो भी हो आप समझे या ना समझे, ये जगत भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ने ये जगत इसीलिए बनाया कि जगत से आप सुविधा लो और भगवत धाम लौट जाओ। इस जगत की वस्तुओं को भोगते समय खुद को भोक्ता मत मानो, जितना जरूरी है उतना ले लो। क्यों? जीने के लिए। क्यों जीना है भाई? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमको जीना है कि तत्व जिज्ञासा के लिए, और कोई काम नहीं है। यहाँ बाहरी जगत के लोगों की काम यह है कि जगत ईश्वर ने बनाया हमारे भोग के लिए, जितने पारो भोगो भोग लो। कब तक पता नहीं, शरीर है छूट जाएगा तब तो कैसे क्या होगा, भोग लो जितना भोगना है। भोग से शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, भोग से किसी को आनंद नहीं मिलता है। आप कहेंगे कैसे आप बोल सकते हैं मिलता? अरे भाई वो तो अनित्य आनंद है, क्षणिक के लिए मिलता है, बाद में तो चला जाता है आनंद। कुछ खा लिया आप, रसगुल्ला खा लिया, ठीक है थोड़ा क्षुधा निवृत्ति हो गया, क्षणिक के लिए संतुष्टि हो गई, क्षुधा निवृत्ति हो गई, फिर बाद में क्षुधा लगेगी कि नहीं? तो इस जगत की जितने सारी वस्तुएं हैं इसको भोगे और इसी में रम जाए, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने समझाया, कहा कि देखो आप सब कुछ भगवान के लिए करो, क्रियाद्वैतम, क्रिया का अद्वैतता, जो कुछ करोगे भगवान के लिए करोगे, आपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए करना है। अगर भगवान के लिए हम करते हैं इसी को ही क्रियाद्वैत कहते हैं। जिस समय व्यक्ति भगवान से खुद को अलग कर लेता है, जिस समय संसार की वस्तुओं को भगवान से भिन्न रूप से देख करके खुद को भोक्ता के रूप में मान लेता है, यही उसकी बड़ी मुश्किलें हो जाती है। देखिए भिन्न और अभिन्नता कैसे समझना, और एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए आप जमुना में चले जाइए, इस समय जमुना में बहुत पानी आई है ना, तो आप कहेंगे ये पानी जमुना जी के पानी है। हाँ पानी, लेकिन पानी बहती रहती है जमुना में ना, जमुना बहती रहती है मतलब हमेशा के लिए परिवर्तनशील हो, परिवर्तन है, यहाँ परिवर्तन हो रहा है जमुना में पानी का, लेकिन आप तो उसको कहते हैं पानी जमुना के। हाँ ये भी एक तरह का ठीक है, क्या समझ रहे हैं ना। तो उसी सब जगत जैसे भगवान है, कैसे भगवान है इस जगत में, भगवान हमेशा के लिए यहाँ है और परिवर्तन में भी हो रहे हैं, भगवान कैसे हो रहे हैं, ये सब सिद्धांत को भक्तों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मना। द्रव्याद्वैतम में भी यहाँ कहा गया कि जैसे जितने सारे द्रव्य हैं भोग के लिए भोग सामग्रियां हैं, जैसे एक व्यक्ति का परिवार होता है, उसके पत्नी होते हैं या पति होते हैं, बच्चे होते हैं या सगे संबंधी होते हैं, सबके जो उद्देश्य एक होना चाहिए, क्या उद्देश्य एक है, भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा करना, और सबकी उद्देश्य एक है इस शरीर छोड़ने के बाद हम भगवत धाम जाएंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, ये है द्रव्यद्वैतम तथात्मना वर्तयन स्वानुभूत्येह। इसे अनुभूत्या अनुभूति के अनुसार यह त्रिन स्वप्नान धुनुते मुनि। जो दार्शनिक चिंतक या जो सिद्धांत को शास्त्र की विचारधाराओं से सही रूप से समझे हैं, ये तीन सपनों से मुक्त हो सकते हैं और ये भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इस संसार की अनित्यता से मुक्त होकर के, अविद्या से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये है ये श्लोक का तात्पर्य। फिर 63 नंबर 63 में हम कहते हैं कार्य कारण वस्तुएक दर्शनम पटतंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। जब मनुष्य इस समझता है, सॉरी जब मनुष्य यह समझता है कि फल तथा कारण एक है और द्वैत अंततः इस विचार की भांति अवास्तविक हैं कि वस्त्र के धागे वस्त्र से भिन्न हैं, तो वह एकत्व की अवधारणा को प्राप्त होता है जिसे भावद्वैत कहते हैं। जैसे कहें हम लोग कि पट तंतु से या क्या कहते हैं उसको, सूत से वस्त्र बना है, पट बना है, धागा नहीं हो तो वस्त्र नहीं रह सकता है, धागा ही वस्त्र के रूप में रूपांतरित हो गया है। तो इसी हिसाब से जो तार्किक लोग तर्क कहते हैं कि यही जगत ही भगवान है, लेकिन चीत अचीत ईश्वरात्मक जगत है। अंडंतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्म संहिता में कहा गया है भगवान परमात्मा के रूप में हर वस्तु में हर चीज में ये हैं, अंडंतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, इसीलिए जगत को हम सब अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। अगर भगवान नहीं हुए वहां परमात्मा के रूप में, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी वस्तु इस जगत में, किसी भी वस्तु का इंडिपेंडेंट अस्तित्व संभव नहीं है भगवान को छोड़ करके। भगवान है इसीलिए जगत है। जैसे आप कहते हैं हाथ में धूल लीजिए, धूल अपना हाथ में है इसीलिए धूल का अस्तित्व वहां देख रहा है। अगर धूल आप इसे फेंक देंगे तो धूल क्या होगा, बिखर जाएगा, है ना। तो हाथ में है, तो जगत भगवान के हाथ में है, भगवान है इसके पीछे, कारण के रूप में भगवान है। तो ये जगत चीत अजितात्मक, ये जो सिद्धांत है इसको समझना चाहिए। ये है क्रियाद्वैत है, और जो द्रव्याद्वैत, जत ब्रह्मणि परे साक्षात सर्वकर्म समर्पणम मनोवाक्तनुभि पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। यहाँ क्रियाद्वैत के बारे में कहा गया है। हे युधिष्ठिर पार्थ, जब मनुष्य के मान वाणी तथा शरीर द्वारा किए गए सभी कार्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित किए जाते हैं, तो उसे कर्म का एकत्व प्राप्त होता है, जिसे क्रियाद्वैत कहा गया है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को सिखाता है कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर देने के स्तर तक पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया है, जत करोषि जदस्नासि जत जुहोषि ददासि जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम् अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी आहुति दो तथा दान में दो तथा जो भी तपस्या करो, वह सब मुझे भेंट रूप में समर्पित होनी चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं तथा जो भी योजना बनाते हैं, यदि वह सब कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति हेतु हो, तो यह अद्वैत है। समझे, जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ अगर भगवान के लिए करते हैं, ये अद्वैतवाद है। और भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन तथा कृष्ण भावनामृत हेतु कार्य करने में कोई अंतर नहीं है। दिव्य पद पर ये एक हैं, किंतु इस अद्वैत के विषय में हमें अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। हमें अपनी स्वयं की अद्वैतता नहीं गढ़ लेनी चाहिए, स्वयं की अद्वैतता नहीं गढ़ लेनी चाहिए। इसके ऊपर में एक उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए, हमारे शास्त्र कहता है, गौड़ीय वैष्णव का यह सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत में आ गया, कृष्ण भावनामृत में आ गया मतलब वो दीक्षा ले लिया, भगवान के नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, संतों के समाज में हरिकथा श्रवण करता है, धाम दर्शन के लिए जाता है, भले वो वैदिक सारी कर्मकांड क्रिया नहीं किया हो, फिर भी समझ लेना चाहिए कि उसका सभी कर्म का मतलब वैदिक कर्म का समाप्त हो गया है, सब कर लिया है वो व्यक्ति। ये सिद्धांत है, ये एकत्व है, अद्वैतवाद है। ये मतलब कृष्ण भावनामृत में आ जाने के बाद उस व्यक्ति को अलग रूप से वैदिक कर्मकांड की अनुसरण करने का कोई जरूरी नहीं है। मतलब कृष्ण भावनामृत में सब कुछ अंतर्भुक्त है, कृष्ण भगवान में सब कुछ आ जाता है। जैसे एक और एक कहते हैं, जैसे भगवान जब स्वयं रूप में आते हैं, चैतन्य चरितामृत कहता है, आर सब अवतार ताते आसी मिले। स्वयं रूप कृष्ण जब अवतरित होते हैं, भगवान के जितने सारे अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं, सब उसमें उनमें सम्मिलित हो जाते हैं और आते हैं। मतलब जिन्होंने कृष्ण को भजना कर लिया, इसका मतलब क्या है, सबका भजना हो गया, भजन हो गया। क्या समझ रहे हैं, तो यही है कि कृष्ण भावनामृत में जो आ जाते हैं उनको अलग रूप से और कई वैदिक कर्मकांड का अनुसरण करने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हरिनाम ही जप करो और भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितमानस पढ़ो, और साल में एक बार वृंदावन आओ कार्तिक में, और मायापुर में आ जाओ नवद्वीप मंडल परिक्रमा में, बस आपका दरवाजा खुल जाएगा चिन्मय धाम के लिए। तो जो लोग यहाँ आए हैं कार्तिक में ये ब्रजमंडल के लिए, आपको मैं आमंत्रित देता हूँ, मैं मायापुर से आया हूँ भाई, मायापुर में आ जाइए और हम लोगों के साथ चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है वो ही परिक्रमा होता है ना गौर पूर्णिमा के अवसर पर। वो देखिए मायापुर बहुत कृपामय है और ज्यादा कृपालु है चैतन्य महाप्रभु। यहाँ तो एक महीना तक कितना परिक्रमा करने पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम थक गए, हम नहीं जा पाएंगे, मुंबर ज्यादा हो गए, एक महीना चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 7 दिन के लिए मायापुर में आ जाइए, यही है चैतन्य महाप्रभु जी का महाबदान्यता। नमो महाबदान्या कृष्ण प्रेम प्रदाय। तो उन्हीं के शरण में आ जाओ, समझ गए ना, सब बोल रहे हैं नमो महाबदान्या। इसीलिए तो बदान्य महापुरुष है कि जो आप यहाँ एक महीना तक इतना कष्ट कर रहे हैं तो ही 7 दिन में चैतन्य महापुरुष दे देंगे, कोई बात नहीं। आप यहाँ आ गए अच्छा है, और मन बना लीजिए अभी टाइम है गौर पूर्णिमा के लिए मायापुर, गौर पूर्णिमा मनाने के लिए मायापुर धाम पधारिए और सभी भक्तों के साथ आनंद लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहे थे 9:45 तक समाप्त कर देना चाहिए, 8:45 तक समाप्त कर देना चाहिए, अब हो गया है, एक दो प्रश्न है। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण प्रश्न है, हाँ ये बोलिए। माइक है, कुछ माइक है क्या, दीजिए, माइक नहीं है, अच्छा बोलिए। नहीं सुन, कृष्ण हाँ हाँ एक्स्ट्रा हाँ तो जो भक्त ने वो कॉन्सेप्ट बताता है उनसे पूछ लेना चाहिए। और मैंने जो आज कॉन्सेप्ट बताया आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए क्लियर हुआ ना, तो कोई बात नहीं। और जो भक्त कई कुछ दूसरा कुछ व्याख्या देता है, कंफ्यूजन लगता है, उनसे क्लारीफाई कर लीजिए। सुनिए सुनिए, वो जो बोल रहे हैं ना उनको कहिए, जो भागवत का दूसरा श्लोक कौन है, दूसरा श्लोक धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्य हृदय तत्र पृथ्वी शुश्रुषुभि तत्कणा। ये जो श्लोक है कहीं इस श्लोक का श्रीधर स्वामी का व्याख्या पढ़ लीजिए। श्रीधर स्वामी वहाँ कहते हैं जो लोग वैसे अलग अलग क्रियाएं में लग जाते हैं और कहते हैं कि उनसे भी भगवान की भक्ति होती है, उसमें कहते हैं वो भगवान हृदय में नहीं आते हैं इतना जल्दी, बहुत विलंब लगता है उसमें आने में। आप जैसे कह रही है ना वैसे अगर करेंगे तो भगवान हृदय में दृढ़ीभूत नहीं होते हैं, और कभी होते हैं तो बहुत दूर के बाद होते हैं और किंचित मात्र होते हैं। लेकिन सद्य हृदय वरुद्यते प्रकृति भी सुश्रुषुभिता प्रणाम, जब भागवत की सुनने में आ जाता है व्यक्ति, मन करता है सुश्रुषुभि, उस समय भगवान हृदय में बस जाते हैं। यही है भगवान की क्रियाओं में, भगवान की भक्ति में और अलग सारी क्रियाओं में अंतर है। जिसको भक्ति के रूप में भूल समझते हैं और कहते हैं उसके द्वारा भक्ति होता है, वो भूल है, और उसमें भगवान हृदय में बस नहीं बजते हैं। श्रीधर स्वामी क्लियरली बोलते हैं विलम्बेन और किंचित मात्र, तो उसमें क्यों फंसना है जो कह रहे हैं उनको। वो दूसरा श्लोक का श्रीधर स्वामी का व्याख्या पढ़ने के लिए बोलिए, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ का श्रीमद्भागवतम।